वहीं नैना, रणविजय, आकांक्षा, उर्वशी और ईशान ओबेरॉय के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। आरव मल्होत्रा सीधे नैना के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज़ में ऐसा अथॉरिटी था कि किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अभी तुमने कहा कि तुम्हें शर्म आती है कि ये तुम्हारी बेटी है, और तुमने इसे पाप की निशानी तक कह दिया। लेकिन कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर मेरी बेटी के लिए किसी ने भी एक अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया तो उसका जवाब मैं दूंगा। इतना कहकर उन्होंने मुड़कर झलक की तरफ देखा। उनकी आंखों में बरसों का अपनापन, दर्द और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने पूरे हॉल की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहा, सुन लीजिए यहाँ मौजूद हर इंसान, झलक सिर्फ मेरी बेटी है और मैं हूँ उसका पिता, आरव मल्होत्रा। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक्ड रह गया। मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट्स लगातार चमकने लगीं। हर किसी के चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका कविता राणा को लगा। उन्होंने अविश्वास से आरव की तरफ देखा। उनके मुंह से अनायास निकला, आरव तुम? उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ पुराने कनेक्शन की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। वो आरव मल्होत्रा को बहुत अच्छी तरह जानती थी। सिर्फ जानती ही नहीं थी, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, ईमानदारी और रेप्यूटेशन का दिल से सम्मान करती थी। कविता राणा कुछ पल तक बिल्कुल स्पीचलेस खड़ी रहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो कुछ देर पहले रणविजय की बातों में आकर अपमानित कर रही थी, वो भारत के सबसे सम्मानित और पावरफुल बिजनेसमैन आरव मल्होत्रा की बेटी कैसे हो सकती है। उधर रणविजय के चेहरे की मुस्कान पहली बार पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने घबराकर आरव की तरफ देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, नहीं, ये यहां कैसे आ गया? इसका तो यहां कोई रोल ही नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए व्यंग्य से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, समझ में नहीं आता कि आप आखिर इसकी साइड क्यों ले रहे हैं। ये लड़की आपकी बेटी नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि उस दिन अवार्ड फंक्शन में इसने आपसे जो कुछ भी कहलवाया था वो सब झूठ था। फेक पेपर्स और फेक डॉक्यूमेंट्स किसी भी वक्त तैयार करवाए जा सकते हैं। और वैसे भी अगर कभी आपका नैना ओबेरॉय के साथ अफेयर था या आपने उसके साथ यूनियन किया था, तो फिर ये लड़की उसी यूनियन की निशानी हुई ना मिस्टर मल्होत्रा। रणविजय के मुंह से इतना निकलना ही था कि ठाप, पूरा हॉल उस जोरदार थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। आरव ने बिना एक पल की देरी किए रणविजय के गाल पर ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। आरव की आंखों में भयंकर एंगर जल रहा था। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, नाजायज रिश्ते की निशानी अगर कोई है तो वो तुम हो रणविजय। पूरा हॉल सन रह गया। आरव ने उंगली उठाकर रणविजय की तरफ इशारा किया, तुम उस चोरी छिपे बनाए गए रिश्ते का काला सच हो जो समाज से छिपा कर रखा गया। तुम सिद्धार्थ के पिता की नाजायज औलाद हो। अगर किसी को गंदा खून कहने का हक है तो वो तुम्हें कहा जाना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, और खबरदार, अगर आज के बाद मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद आरव की नजर कविता राणा पर गई। उन्होंने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, और मिसिज राणा, आपने अभी मेरी बेटी को कैरेक्टरलेस कहा था, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बेटी को किसी अमीर परिवार की दौलत या नाम पाने के लिए किसी को सीढ़ी बनाने की जरूरत नहीं है। शायद आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का बिजनेस एम्पायर कहां कहां तक फैला हुआ है। पूरे हॉल में फिर से साइलेंस छा गया। आरव ने गर्व से झलक की तरफ देखा और कहा, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सीईओ मेरी बेटी झलक मल्होत्रा है, और हाँ, वो हजारों करोड़ की वारिस भी है। और तभी आदित्य झलक को तारीफ करते हुए बोला, और माँ झलक ही है जिसने इस बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड की अपने नाम किया है। ये सुनते ही कविता राणा की टांगों से मानो जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि झलक इतनी बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी निकलेगी। उधर उर्वशी खुराना का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसे लग रहा था जैसे किसी भी पल उसे चक्कर आ जाएगा। तभी अनामिका आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और फिर रणविजय की आंखों में देखकर बोली, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने हमारी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि हम गरीब हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। फिर वो एक कदम आगे बढ़ी और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें क्या लगा अगर मैं साधारण कपड़े पहनती हूँ तो मेरी कोई पहचान नहीं है? रणविजय, मैं चाहूँ तो तुम जैसे 10 लोगों को खरीद सकती हूँ। तुम मेरे नौकर बनने के भी लायक नहीं हो। इतना कहकर अनामिका ने मुस्कुराते हुए अपने बाल झटक दिए।
अब रणविजय का सिर शर्म से झुक चुका था। उसे लग रहा था कि अगर इसी वक्त जमीन फट जाए तो वो उसमें समा जाए। तभी सिद्धार्थ का ईगो पूरी तरह जाग उठा। वो तेज आवाज में बोला, बस करो ये सारा ड्रामा। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी करोड़पति है तो फिर मेरी शादी में क्या कर रही है? शादी हो गई, खाना पीना भी हो गया, अब यहाँ खड़े होकर तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग? सिद्धार्थ की बात सुनकर आकांक्षा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसे सिद्धार्थ का ये एटीट्यूड हमेशा से पसंद था। वहीं सिद्धार्थ के मन में अजीब सी फीलिंग चल रही थी, क्योंकि झलक ने ना उससे अपने प्यार का इजहार किया ना शादी रोकने की कोशिश की। अब उसे लगने लगा था कि झलक सिर्फ मीडिया के सामने ड्रामा करके उनकी शादी खराब करना चाहती है। इसलिए उसने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम लोग इतने बड़े करोड़पति हो तो यहां से चले जाओ। करोड़पतियों को हमारी शादी में आकर तमाशा करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी झलक हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यस मिस्टर खुराना, हम लोग तो यहां वैसे भी सिर्फ आपकी शादी अटेंड करने आए थे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आपकी शादी आकांक्षा ओबेरॉय से हो जाए, और अब मेरे जाने का वक्त भी आ चुका है। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, इनफैक्ट इस वक्त मेरा प्राइवेट जेट पहले से ही ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि आज अभी इसी वक्त मैं इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। झलक की ये बात सुनते ही सिद्धार्थ के दिल में जैसे कुछ छुप गया। झलक के हमेशा के लिए चले जाने की बात ने उसे भीतर ही भीतर बेचैन कर दिया, हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तभी झलक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक रिटर्न गिफ्ट जरूर देना चाहूंगी मिस्टर खुराना। झलक की ये बात सुनते ही नैना और ईशान ओबेरॉय के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके दिल की हार्टबीट अचानक तेज हो गई। उन्हें महसूस होने लगा कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि झलक कुछ कहती, आरव मल्होत्रा आगे बढ़े और शांत लेकिन पावरफुल वॉइस में बोले, इससे पहले कि मेरी बेटी सिद्धार्थ खुराना को उसका रिटर्न गिफ्ट दे, मैं भी तुम लोगों को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी जो भी करेगी सोच समझ कर ही करेगी। लेकिन ईशान ओबेरॉय, तुम्हें याद है ना, तुमने धोखे से मेरी मुंबई वाली प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, जहां आज तुमने ओबेरॉय इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखा है। ईशान ने तुरंत गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो आरव, वो जमीन तुमने हमें बेची थी, हमने उसे लीगली खरीदा था। अब ये मत कहना कि हमने तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड किया था। आरव हल्का सा हंस पड़े, रिलैक्स मिस्टर ओबेरॉय, इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें आज किसी फ्रॉड केस में फंसाकर जेल भेजने नहीं आया हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी थी तुम लोग कर चुके हो, लेकिन अब वक्त आ चुका है तुम लोगों से अपना सब कुछ वापस लेने का। इतना कहकर उन्होंने पीछे खड़े अपने लॉयर की तरफ देखा, लॉयर साहब इन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। वकील तुरंत आगे आए, उन्होंने एक लीगल फाइल खोलकर ईशान ओबेरॉय के सामने रख दी। आरव ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जिस जमीन पर इस वक्त तुम्हारी ओबेरॉय इंडस्ट्रीज खड़ी है उस जमीन के असली ओनर मेरे पिताजी श्री दिग्विजय मल्होत्रा हैं। पूरा हॉल फिर से शॉक्ड रह गया। आरव आगे बोले,
बहुत साल पहले ही मैंने वो पूरी प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम ट्रांसफर कर दी थी। उस वक्त मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, और मेरे उन्हें सरप्राइज करने से पहले तुम लोगों ने अपनी घटिया चाल चल दी थी। लेकिन तब तक मैं वो जमीन उनके नाम कर चुका था, इसीलिए उस जमीन की एकमात्र लीगल ओनर वही है, तुम नहीं। इतना कहकर उन्होंने वकील के हाथ से एक लीगल नोटिस लिया और ईशान की तरफ बढ़ा दिया, ये लो इसमें उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स हैं, और ये रहा ऑफिशियल नोटिस, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ घंटों का समय दे रहा हूँ, अपनी कंपनी का जो भी सामान है उसे वहां से हटा लो, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि उस पूरी जमीन पर बुलडोजर चलेगा, वहां का एक एक ढांचा गिरा दिया जाएगा। ये सुनते ही नैना गुस्से से चिल्ला उठी, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हमारी 100 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तुम इस तरह हमारी प्रॉपर्टी नहीं तोड़ सकते, हम कोर्ट जाएंगे। तभी आरव के वकील शांत स्वर में बोले, मैडम आपको कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब तक कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर नहीं देता तब तक लीगल ओनर अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जो भी फैसला लेना चाहे वो पूरी तरह कानूनन कर सकता है। अगर वो जमीन को खाली करवाकर पूरी तरह समथल करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का पूरा लीगल राइट है। इतना कहकर उन्होंने नैना और ईशान के हाथ में लीगल नोटिस थमा दिया, ये लीजिए कोर्ट नोटिस, आगे की कार्रवाई अब कानून के अनुसार होगी।